नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल जयपुर में नए आपराधिक कानूनों के एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में शामिल होंगे। प्रदेश में 12 जिले के अंता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर, अधिसूचना कल जारी होगी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा, राज्य सरकार ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने और प्रसारण तंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है और शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों से प्रवेश और परीक्षा शुल्क लेने के लिए यूपीआई अपनाने को कहा है। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कल प्रस्तावित जयपुर दौरे को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लेने आ रहे हैं। वे इस अवसर पर जेईसीसी में लगाई जा रही प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। ये प्रदर्शनी 18 अक्टूबर तक चलेगी। इसमें नए आपराधिक कानूनों के एक साल के सकारात्मक बदलाव को दर्शाया जाएगा। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम स्थल सीतापुरा स्थित जेईसीसी का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य सचिव सुधांश पंत और पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में पुलिस महानिदेशक ने लोगों से अधिक संख्या में इस प्रदर्शनी को देखने की अपील की।
माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इसका उद्घाटन करेंगे और ये प्रदर्शनी सभी आमजनों के लिए 14 तारीख से 18 तारीख तक रहेगी। तो मेरा अनुरोध है कि 14 से 18 के बीच में लोग आएं और जो नए कानूनों में जो जनता के लिए, जो पीड़ितों की मदद के लिए और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए जो नए प्रावधान आए हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करें।
इस दौरान श्री शाह का 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग तथा 8,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम है। समारोह में विकसित राजस्थान 2047 कार्य योजना का विमोचन और 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ भी किया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। सिरोही जिले के आबू रोड में ब्रह्मा कुमारी संस्थान में चल रहे वैश्विक शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक परिदृश्य में भारत बड़ा स्तंभ बनकर उभरा है और उसे विश्वास के साथ देखा जा रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि विश्व में हमारा जो स्वाभाविक स्थान है उसे हासिल करने के लिए हम सबको ताकत लगानी पड़ेगी। ब्रह्मा कुमारी परिवार यही सिखाता है कि सभी को देश के विकास में योगदान के लिए अपना अपना प्रयास करते रहना चाहिए।
सबसे सशक्त देशों की गिनती में आना, सबसे एडवांस्ड कंट्रीज की गिनती में आना, वो हमारा एक नेचुरल स्पॉट है। वो हमें फिर से हासिल करना है और उसको हासिल करने के लिए हम सबको ताकत लगानी पड़ेगी। हम सबको अपना अपना प्रयास करना पड़ेगा, तभी जाके ये संभव हो पाएगा। हम चाहे एक टीचर हो, चाहे एक राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे हम एक डॉक्टर हो, चाहे हम एक गुरु हो, हम सबको अपना योगदान देना पड़ेगा और यही ब्रह्मा कुमारी परिवार में हम सबको सिखाते हैं कि हम अपने अपने क्षेत्र में अपने प्रयासों से क्या बदलाव ला सकते हैं उस पर ध्यान।
4 दिन के सम्मेलन में कई मंत्री, जनप्रतिनिधि, उद्योग तथा फिल्म जगत की हस्तियां और समाज सेवी भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का समापन कल होगा। प्रदेश के 12 जिले के अंता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आज जिला निर्वाचन अधिकारी रोहित ताश्व सिंह तोमर और पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने मांगरोल क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव से संबंधित अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर पेयजल, छाया, प्रकाश और समुचित साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कहा कि सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में नियमित रूप से निरीक्षण कर निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें ताकि मतदाताओं को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। गौरतलब है कि उपचुनाव के लिए अधिसूचना कल जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर रहेगी। मतदान 11 नवम्बर को होगा और मतगणना 14 नवम्बर को होगी। प्रदेश में सहकारिता के दायरे को और अधिक व्यापक बनाने के लिए सहकार सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत ग्राम पंचायतों में बड़ी संख्या में नए पैक्स का गठन किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सहकारी समितियों की सदस्य संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। प्रदेश में जमीनी स्तर पर सहकारिता का नेटवर्क मजबूत होने से अधिक लोगों तक जनकल्याणकारी योजनाओं की सुचारू पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में जारी की गई नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति में देश में सहकारिता का दायरा और बढ़ाने पर जोर दिया गया है। राजस्थान में लगभग 8,700 पैक्स का विशाल नेटवर्क मौजूद है। साथ ही राज्य की पैक्स विहीन ग्राम पंचायतों में पैक्स गठन की कार्रवाई जारी है। अब तक 5,00,000 नए सदस्य बनाए जा चुके हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने से लेकर प्रसारण तंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है। कोटा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री नागर ने कहा कि मौजूदा सरकार को विरासत में जर्जर बिजली तंत्र मिला जिसे उन्होंने दुरुस्त किया है।
हम इसकी सुधार की ओर अग्रसर कर रहे हैं और आने वाले समय पे कैसे यह काम हो पिछली सरकार से 5 गुना ज्यादा रफ्तार से अभी चाहे वो हमारा डिस्कॉम हो चाहे हमारे प्रसारण तंत्र हो या उत्पादन तंत्र हो उसमें हम प्रगति कर रहे हैं और आने वाले समय में इसके और हम प्रगति करें इसके लिए कुछ टैरिफ की वृद्धि हुई है वो मात्र ऐसे उपभोक्ताओं पर जो सक्षम है।
श्री नागर ने कहा कि नए टैरिफ में सभी विद्युत उपभोक्ताओं को उनकी श्रेणी के अनुसार विद्युत शुल्क से न्यूनतम 35 पैसे से 80 पैसे तक प्रति यूनिट की राहत दी है। उन्होंने कहा कि डिस्कॉम के 25 वर्ष के इतिहास में ये पहला अवसर है जब ऊर्जा शुल्क में छूट दी गई है। भरतपुर के टेक्नोलॉजी पार्क में वन नेशन वन इलेक्शन विषय को लेकर युवा सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह योद्धा ने कहा कि बार बार होने वाले चुनाव से समय और धन की बर्बादी होती है और विकास की गति प्रभावित होती है। वहीं अन्य वक्ताओं ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को सुधार करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल होगी। युवा सम्मेलन में बड़ी संख्या में छात्र और युवाओं ने शिरकत की। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों से प्रवेश और परीक्षा शुल्क लेने के लिए यूपीआई अपनाने को कहा है। एनवीएस जैसी स्वायत्त संस्थाओं को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूलों में वित्तीय लेन देन को सुव्यवस्थित करने के लिए यूपीआई अपनाने के लिए जोर दिया है। डिजिटल भुगतान प्रणालियों को अपनाने से पारदर्शिता और अभिभावकों के लिए स्कूल जाए बिना भुगतान करने में सहजता होगी। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि नकद भुगतान से डिजिटल भुगतान में बदलाव से स्कूल प्रशासन का आधुनिकीकरण होगा और 2047 तक विकसित भारत लक्ष्य को बल मिलेगा। और अब मौसम। प्रदेश भर में दिन और रात के तापमान में कमी से सुबह शाम गुलाबी सर्दी का एहसास होने लगा है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार बीते 24 घंटों में कई शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड हुआ। वहीं दिन में आसमान साफ रहने से हल्की गर्मी का असर बना हुआ है। राज्य के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में भी गुलाबी सर्दी का असर देखा जा रहा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
तापमान में हुई गिरावट के कारण सुबह व शाम यह सर्दी का असर देखा जा रहा है, जिसके कारण लोग अब गर्म कपड़ों में भी नजर आने लगे हैं। वहीं माउंट आबू के अलावा सिरोही जिले के अन्य हिस्सों में भी सर्दी का असर देखा जाने लगा है। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में दूर दूर से सैलानियों के आने का सिलसिला जारी है। हल्की सर्दी के कारण यहाँ का मौसम पर्यटकों के लिए अच्छा बना हुआ है और वे यहाँ के मौसम का आनंद ले रहे हैं। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
मौसम विभाग के अनुसार पिछले दिनों हुई बारिश के बाद वातावरण में नमी और उत्तर पूर्वी हवाओं के कारण राज्य का तापमान सामान्य से 2 से 7 डिग्री नीचे चल रहा है। शुष्क मौसम के बीच रात के समय पारा गिरने से ठंड का असर साफ महसूस किया जा रहा है। अनुमान है कि इस बार सर्दी का मौसम सामान्य से थोड़ा पहले दस्तक दे सकता है। नवम्बर और दिसम्बर में मावठ और शीतलहर के दौर तेज होने के आसार हैं। अजमेर हाईवे पर दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग की ओर से कल से लेन ड्राइविंग अभियान चलाया जाएगा। अजमेर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से चलाए जाने वाले अभियान के तहत भारी मोटर वाहन चालकों को लेन ड्राइविंग सिस्टम की जानकारी दी जाएगी। सहायक पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि 5 दिनों तक जागरूकता अभियान के बाद यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को सीज किया जाएगा। जयपुर स्थित सप्त शक्ति कमांड की ओर से आज ऑनर रन आयोजित की गई। सेना के शौर्य और बलिदान की परंपरा थीम पर हुई दौड़ में जवानों और पूर्व सैनिकों ने भाग लिया। कमांड परिसर स्थित स्टेडियम से शुरू हुई ये दौड़ क्वींस रोड और जयपुर मिलिट्री स्टेशन होते हुए स्टेडियम पर समाप्त हुई। दौड़ को चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल HS वांद्रा ने रवाना किया। इस मौके पर सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। प्रोमो रन का मकसद भारतीय सेना के वीर सैनिकों और पूर्व सैनिकों के साहस और बलिदान को सम्मानित करना तथा आम लोगों में फिटनेस, स्वास्थ्य और राष्ट्रभक्ति की भावना को बढ़ावा देना था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल जयपुर में नए आपराधिक कानूनों के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में शामिल होंगे। प्रदेश में 12 जिले के अंता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर, अधिसूचना कल जारी होगी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा, राज्य सरकार ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने और प्रसारण तंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है और शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों से प्रवेश और परीक्षा शुल्क लेने के लिए UPI अपनाने को कहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।